उपस्थित सुधिजनों देवियों, जो कठोपनिषद की जो श्रृंखला थी, आज उसकी तीसरी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे। कहानी चल रही थी, वाजश्रवा ऋषि यज्ञ कर रहे थे, विश्वजीत यज्ञ। और जिस यज्ञ का नियम है कि उसमें सब कुछ दान में देना होता है, वो दान में तो दिया, और साथ में घर में जितनी भी बुढ़ी गायें थे जो काम के लायक नहीं थी, घास खाना छोड़ चुकी थी, पानी पीने लायक नहीं है, चल नहीं सकती हैं, ऐसी गायों को भी उन्होंने सब ब्राह्मणों को दान में दिया। पास में बैठा हुआ उनका छोटा बच्चा है, 8 साल का नचिकेता, वो देख रहा था। उसने देखा ये गलत बात है, ऐसी ऐसी बुढ़ी बुढ़ी गायों को पिताजी दान में दे रहे हैं, इससे तो पाप होता है, इसमें पुण्य कम होता है, पाप ज्यादा होता है। सोचा शायद इसीलिए कि ये काम के नहीं है, सिर्फ खाते हैं और कुछ बदले में कुछ देते नहीं है, इसीलिए पिताजी इनको दान में दे रहे हैं। मैं भी तो बच्चा हूं, कुछ करता धरता नहीं हूं, खाता हूं, खेलता कूदता हूं, ऐसा तो नहीं कि मुझे भी किसको दान में देंगे। तो उसने पूछा अपने पिताजी से, सहोवाच पितरं तात कस्मै मां दास्यसीति। उसने पूछा, पिताजी आप मुझे किसको दोगे? पिताजी बड़ा व्यस्त थे यज्ञ के कार्यों में, लोग इतने सारे लोग हैं, दान दक्षिणा करना होता है, जब भी घर में आपका उत्सव होता है कितना व्यस्त होते हैं। और बच्चा अगर आपको कोई पूछे तो हम तंग हो जाते हैं, क्योंकि लगता है बच्चा कुछ वैसे ही पूछता है, काम का नहीं है। तो नचिकेता ने पूछा, आप मुझे किसको दोगे? पहली बार पूछा, दूसरी बार पूछा कि पापा आप मुझे किसको दोगे दान में, तीसरी बार पूछा। पिताजी को गुस्सा आया क्योंकि काम में लगे हुए थे, बोले मौत को दूंगा तेरे को। वैसे बोल देते हैं पिता माता, भारत में तो ये बड़ी आम बात है, मर क्यों नहीं जाता, पर ऐसा नहीं बोल, मतलब अंदर नहीं होता पर वो बोलते हैं, कोई फीलिंग के साथ नहीं बोलते हैं। तो पिताजी के मुंह से भी निकला कि मौत को दूंगा। ध्यान रखिए, कहानी के माध्यम से हम उपनिषद का जो कथाकार है, जो कठोपनिषद का ऋषि है कठ, वो आपको आत्मज्ञान तक आखिर में ले जाएंगे। और इस कहानी के बीच बीच के कुछ संदर्भों को समझना बड़ी जरूरी है जब आगे हम चलेंगे। उपनिषद आत्मा का ज्ञान बताने के लिए होता है। आत्मा, हमें इसकी चिंता नहीं है कि मेरी आत्मा है कि नहीं, मैं जब तक जिंदा हूं मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे अगर किसी आत्मा परमात्मा के बारे में चिंता है, इसीलिए कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। नचिकेता भी यम से आगे जाकर मृत्यु से पूछेगा कि मरने के बाद आत्मा का क्या है, जीते जी तो कोई जरूरत ही नहीं जानने की, मैं जिंदा हूं तो हूं, आत्मा नहीं है, कोई कहता है आत्मा नहीं है तो ना होने दे, पर मैं तो हूं। मरने के बाद क्या होता है किसने देखा? मरने के बाद क्या होता है ये जानने के लिए मरना पड़ता है। थोड़ा माइक कम कर दें। जब मरते हैं तो बताने लायक हम होते नहीं है, इसीलिए जिन्होंने जाना मृत्यु के बाद क्या होता है वो बता नहीं पाए, क्योंकि वो मर चुके थे। बाकी एक तरीका है दुनिया के हर चीज को जानने का, आप उसको योग की साधनाओं के द्वारा अनुभव करते हैं, ऋषि मुनि ज्ञानी लोग करते हैं, अनुभव में लाते हैं। कठ ऋषि जो खुद आत्मज्ञानी है, जो आत्मा के बारे में हमारे तक कुछ बताना चाहते हैं, उन्होंने एक नाटक रचा, और उस नाटक का जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मुख्य पात्र है, वो मृत्यु है। मृत्यु आचार्य है, गुरु है, ये हमारी संस्कृति में मौत को आचार्य गुरु माना जाता है, जहां से हम कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु होता है, और हमारे जिंदगी में आप जो कुछ भी करते हैं क्योंकि करते हैं, क्योंकि आप डर से करते हैं, मौत से बचने के लिए करते हैं। आप अपना अच्छा खाना खाते हैं, अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप मरना नहीं चाहते हैं, कम से कम जल्दी तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप पढ़ते हैं क्योंकि आपको कमाना है क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि आपको खाने के लिए चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको सुविधाएं चाहिए, जिससे कि मौत से मैं जितना कम से कम दूर रहूं। तो जीवन में मौत बहुत कुछ सिखाता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में मृत्यु को आचार्य माना गया। मृत्यु एक घटना है, मृत्यु एक इंसिडेंट है, जो कोई आदमी नहीं है, पर कठ ऋषि उसको एक पात्र बनाते हैं। मैं विषय पर आने से पहले दो चीजें स्पष्ट कर दूं, खास करके हम लोगों की थोड़ी ये बीमारी है। जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं उसका विषय हमारे लिए मायने नहीं रखता कि उसमें मैटर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पर उसकी जो कहानी है वो हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। पुराण बने थे, वेद उपनिषद दर्शन ज्ञान की जो बातें हैं जो विद्वानों के समझ में आता है, आम आदमी के समझ में नहीं आता है, उसको कहानियों के माध्यम से और बड़े रोमांचक और मनोरंजक माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। विषय हट गया, हम उन पुराणों की कहानियों की पात्रों को सच समझ के बैठ गए। मथुरा में राक्षस थे, कितने बड़े बड़े, संस्कृत में योजन हिसाब होता है, अगर ये उसको ट्रांसलेट करें तो 18-18, 20-25 किलोमीटर वो ऊंचे होते थे, 8-10 किलोमीटर चौड़ाई वाले होते थे राक्षस। संख्या कितनी होती थी, करोड़ों में होती थी। पूरी की पूरी मथुरा 18 किलोमीटर की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे राक्षस अगर घुस जाए तो 200-300 राक्षसों से पूरा हिंदुस्तान भर जाएगा, पर करोड़ों में केवल मथुरा में हो जाते थे। हमारी समस्या है कि जब हम फिल्में देखते हैं, जब आप हैरी पॉटर देखते हो या कोई फिल्में देखते हो, आप उसका आनंद लेते हो, उसके अंदर कुछ सीख मिलता है लेते हो, पर कभी नहीं सोचते हो कि ये सच है। पर जब भी हम वही चीजें धर्म के नाम पर दिखाते हैं, हम उसको सच समझने बैठ जाते हैं। बच्चे सुपरमैन देखते हैं, वो स्पाइडरमैन देखते हैं, कोई बच्चा बड़े तो ज्यादा बेवकूफ होते हैं, बच्चा कम बेवकूफ होते हैं, कोई बच्चा ये नहीं समझता कि ये असलियत है, वो उसका मजा लेता है, दुनिया 5-5 बार फिल्में देखता है, उसके तरह कोशिश भी करता है कभी कभी, पर उसको पता है कि ये सच नहीं है। पर हम बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इंजीनियर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, पर हम ये मानने को तैयार नहीं कि ये राक्षस नहीं होते थे, ऐसा नहीं होता था। हमारे यहां ये एक शैली रही, एक पद्धति रही ज्ञान की बातों को समझाने के लिए कहानियों का, और बड़े मनोरंजक कहानियों का, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, आप में से अगर इंग्लिश में हिंदी में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होगी, पूरी की पूरी कहानियां पशुओं की कहानी है, पर इंसान की भाषा में बोलते हैं। शेर बोलता है मैं तुम्हें खाऊंगा, खरगोश कहता है नहीं कुएं में मैंने तुम्हारे, खरगोश थोड़े ही बोल सकता है, पर हमारी बेवकूफी है कि शुक्र है कि पंचतंत्र जो है वो धार्मिक कहानियां नहीं है, इसीलिए हम उसको समझते हैं कि ये तो बस हमें मनोरंजन करने के लिए बनाया गया। पर खुदा ना खास्ता अगर ईश्वर की कहीं से किसी कारण से ये किसी धर्म से जुड़ जाता, धार्मिक ग्रंथ होता, फिर हम सोचते कि नहीं शेर भी बोला करता था, वो खरगोश भी बोला करता था। इसी तरह इस कठोपनिषद को आगे बढ़ने से पहले दो चीजें क्लियर करता हूं। यह मृत्यु का प्रसंग आया, आगे जाकर मृत्यु ही नचिकेता को उपदेश करता है। मृत्यु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है, मृत्यु एक घटना है, मृत्यु के आर पार आत्मा होती है नहीं होती है अगर कोई बता सकता है वो मृत्यु, पर मृत्यु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बता सकता है। कठ ऋषि उस मृत्यु को एक कैरेक्टर बनाते हैं, एक पात्र बनाते हैं, एक चरित्र बनाते हैं, उसके माध्यम से अपनी बातें रखते हैं। ये स्पष्ट करने के बाद अब कहानियों का आनंद लीजिए। नचिकेता को उसके पिता ने बोला, तुझे मैं मौत को दूंगा। नचिकेता सोचने लगा, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्वित्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। सोचा, मैं कोई, पिताजी ने ऐसा क्यों बोला कि मैं मौत को दूंगा? छोटा बच्चा सीरियसली ले लेता है बातों को। मैं तो क्लास में फर्स्ट आता हूं, पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी, बहुत सारे मामलों में प्रथम आता हूं, फर्स्ट आता हूं, और कुछ चीजों में मैं प्रथम नहीं आता हूं तो द्वितीय जरूर आता हूं, मध्यम आता हूं, मैं बीच का आता हूं, कभी मैं किसी भी मामले में मैं थर्ड ग्रेड का नहीं रहा, इतना गया गुजरा नहीं हूं। तो पिताजी ने ऐसा क्यों कहा कि मौत को दूंगा? मतलब ऐसा होता है जो नालायक बच्चे होते हैं उनको ये बार बार सुनने को मिलता है माँ बाप से, टीचर से, तू गधा है, किसी काम का नहीं, तू गाज वगैरह वगैरह। पर मैं तो बड़ा सयाना हूं, समझदार हूं, मुझे ऐसा क्यों बोला? उसे सोचा, फिर सोचा हो सकता है वो मृत्यु का, यमराज का कोई काम होगा मेरे से, पिताजी मुझे दान में दे रहे, मांगा होगा, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। नचिकेता ने पिता से पूछा, कब जाऊंगा मैं, कब जाऊंगा उसके पास? अबे मैंने वैसे गुस्से में बोल दिया तो मेरा सर क्यों खाता है? नहीं नहीं गलत बात है, आपने बोला मौत को देने के लिए तो दो। बेटे गलती से बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, तू जा अपना काम कर, कोई मृत्यु के पास तुझे नहीं भेजने वाला। नचिकेता पिता को सलाह देता है, क्या? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। पिताजी ये गलत बात है, इतने उम्र के आदमी हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, साधनाएं करते हो, पर देखो अपने पुराने, आपके जो पुराने पूर्वज रहे हैं उनके जरा सोचो, उनके बारे में जो मुंह से बोलते थे वही करते थे। ऐसे नहीं कि आप बोला फिर मुकर गए, झूठ बोलना गलत बात है पिताजी। उन पूर्वजों के इतिहास को पढ़ा होगा पिताजी, आपको पता होगा हमारे पूर्वज कितने जो बोलते थे वो करते थे, और आपने कहानियां पढ़ी होगी हरिश्चंद्र की, अपने बीवी बच्चे तक भी बेच डाला क्योंकि किसी को वचन दे दिया था जो मांगोगे दूंगा। कर्ण ने अपने सीने फाड़ के वो दे दिया जो उसके पास कवच था, दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी, शिवी ने अपने मांस को काट काट के, काट काट के अपने जिंदा शरीर से काट काट के कबूतर को बचाने के लिए देता गया। याद करो वाजश्रवा पिताजी, आपके पूर्वज जो बोल देते थे करके रहते थे कितना मुश्किल है। अगर वो याद नहीं आता तो आप अपने आसपास के लोगों को देखो कितने सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आप झूठ क्यों बोलते हो? झूठ बोलने का क्या लाभ है? सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, क्या मिलेगा झूठ बोल के? इंसान अनाज की तरह पैदा होता है, ऊपर देखिए हरे घास, हरे हरे धान के गत पेड़ होंगे, और फिर वो सूख जाता है, जब उसमें दाना आता है फिर वो सूख करके मर जाता है, वो अनाज जो शस्य फसल, वो फसल 6 महीने के बाद फिर बीज से अंकुरित होता है, फिर वो लहलाता है, हरियाली भर जाती है, फिर धीरे 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 सूख जाता है, फिर बीज से दोबारा अंकुरित होता है। ये इंसान इसी तरह का है, फसलों की तरह, कभी हरा भरा होता है, कभी सूख जाता है, फिर कभी गाय के चारा बन जाता है, खाने लायक होता है।
मतलब झूठ बोलोगे तो भी हरा भरा से वही मरोगे, सच बोलो तब भी मरोगे। जब मरना झूठा और सच्चा दोनों को मरना ही है, बेईमानी करने वाले ईमानदारी करने वाले दोनों को मरना है, तो क्यों ना ईमानदारी के साथ मरो कि अगला जीवन कम से कम सही गुजर जाए। मरना तो है ना, ये बड़ा भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा विचार विषय होता है कि कोई चीज स्थिर नहीं है, बदलता रहता है। सूरज उगता है फिर अस्त हो जाता है, ऐसा नहीं कि सूरज अस्त हो गया तो हो गया, फिर रात चली जाती है, सुबह फिर सूरज उग जाता है, दिन आता है फिर रात आती है। ये वर्तुलाकार गोलाकार है, चक्र के तरह घूमता रहता है, चलता रहता है। जीवन इसी तरह चलता रहता है। फसल बीज आप लगाते हैं, बीज डालते हैं, उसमें अंकुर होता है, अंकुर पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल फूल आते हैं, फिर पेड़ मर जाता है, उसके बीजों से फिर दूसरे पेड़ उग जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है, फसलों का चक्र चलता रहता है, मौसम का चक्र चलता रहता है। गर्मी आती है फिर बारिश आती है, फिर सर्दी आती है फिर गर्मी आती है। दुनिया में हर चीज घूमता है, सूरज घूमता है, चांद घूमता है, पृथ्वी घूमती है, तारे घूमते हैं, हमारा जीवन भी घूमता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से फिर बचपन, पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर बढ़ते हैं, मरते हैं, कहीं खत्म नहीं है, अनंत प्रक्रिया चलती रहती है। पहाड़ों पर बादल बरसता है, बरसता है तो वो पानी फिर नीचे आकर के नदी में आता बन जाता है, नदी के रूप में, नदी समुन्द्र में गिरती है, फिर समुन्द्र से भाप बन के फिर बादल बनता है, वो बादल फिर पहाड़ों में बरसता है, फिर वो पानी नदी के माध्यम से समुद्र में आता है, वो चक्र है। जीवन इसी का नाम है, और यही पश्चिमी और पूर्वी संस्कृति में अंतर है। पश्चिम का जो सोच है, उनका जो दर्शन का जो बेस, जो आधार है, जिसको हम कहते हैं रेखावत है, वो लाइन की तरह, डंडे की तरह, यहां खत शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, जीवन शुरू होता है और खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। इसीलिए जितना मर्जी भोगना है भोगो, जैसा करना है करो, आगे कुछ भी नहीं बचा है। भारत की संस्कृति, पूर्व की संस्कृति इसकी उल्टी है, ये चक्र संस्कृति है, वो डंडे वाली संस्कृति है, सीधी हमारी है कि वो व्हील की तरह, चक्र की तरह, कोई कहीं अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, जो करोगे भोगोगे, फिर करोगे फिर भोगोगे, वो चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। नचिकेता ने पिता से कहा, जीवन का कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं है, जो सच बोलते हैं उनको भी मरना होता है, जो झूठ बोलते हैं उनको भी मरना होता है, जो मोह माया में जकड़ के बैठे हैं उनको भी छोड़ के मरना होता है, जो मोह माया को छोड़ के बिल्कुल सच का साथ देते हैं उनको भी मरना होता है। तो पिताजी क्यों झूठ बोलते हो, क्यों कभी कुछ बोलते हो, जो बोलते हो टिके रहो। वाजश्रवा को कुछ ज्यादा ही चोट लगा, उसको पता नहीं था छोटी सी बात इतनी बड़ी बढ़ जाएगी, ये छोटा सा लड़का, कल का पैदा हुआ लड़का, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है मेरे से, ठीक है जाओ। वाजश्रवा ने भेज दिया नचिकेता को, नचिकेता मृत्यु के पास पहुंचा, मृत्यु की देवता जिसको हम यमराज कहते हैं, मृत्यु के पास पहुंचा तो उसके घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, उसकी बीवी ने खोला, पूछा मेरे पिताजी ने यमराज के लिए, मृत्यु के लिए मुझे सौंप दिया है, अब मैं उनका ही हूं, मुझे उनसे मिलना है। बीवी ने कहा घर पर नहीं है। कहां गए? ड्यूटी पर गए, ट्रिप पर। आपको पता है यमराज को रोज बहुत सारे जगह जाना होता है, कहां कहां से उठाना होता है लोगों को, प्राणियों को, कितने तरह को, अरे एक जगह तो नहीं है ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, पृथ्वी तो एक है, और कहां कहां जाना होता है उसका तो जब ऐसा है कि वो घर में रुकने लायक जब तो है नहीं, रोज ट्रिप है। बीबी ने कहा वो आ जाएंगे, उनका काम ऐसे ही है, वो ऐसे ही, मैं भी बड़ा तंग हूं उनसे, घर में कम दिखते हैं, हजार बार कहा इस तरह का काम छोड़ दो, बीवी बच्चे भी घर में है। बोले नहीं, उनका वो पैशन है, लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, आप बैठो चाय पानी पियो, आ जाएंगे जब आप, मैं उन्हीं के, जब तक उनका दर्शन ना करूं, वो कोई आदेश ना दे, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो खाने को जब बोलेंगे तभी खाऊंगा, क्योंकि मैं उनका हो चुका हूं, दास हो चुका हूं। बड़ा मुश्किल है, चलो घर में तो आओ बैठो, नहीं किसी के घर भी नहीं घुसूंगा, दरवाजे के बाहर बैठा रहा। बीबी परेशान हुई, मनी मन कूटती रही, कैसा आदमी है, जब देखो बाहर चला जाता है, सारी समस्याएं मुझे झेलनी पड़ती है। तीन दिन के बाद यमराज घर पर वापस आए, अपना ड्यूटी पूरा करके आते ही दरवाजा खोला नहीं कि बीवी तो भड़क गई, हमें तो भूल चुके हो पैसा कमाने के चक्कर में, जैसे हम लोगों को बोला जाता है जो लोग नौकरी वाकरी बाहर ज्यादातर भी रहते हैं, हम लोगों को तो भूल चुके हो, जब मर्जी बाहर रहते हो, घर में रहते कब हो, पर पता है क्या मुसीबत है तीन दिन से घर पर। बोले कौन सा मुसीबत, पत्नी सुनाती है अगला स्लाइड, वैश्वानर प्रविशत्यतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्यैताम शांतिम कुर्वन्ति हरवैवश्वतोदकम्। बोले सुनो पतिदेव, जो अतिथि होता है और खास करके जो विद्वान ज्ञानी अतिथि होता है वो आग की तरह होता है, वैश्वानर कहते हैं आग को, अग्नि के तरह होता है, जब वो घर में आता है उसको शांत कराना गृहस्थ का धर्म है, अतिथि यज्ञ की चर्चा करते हैं। और जो गृहस्थ अतिथि को शांत नहीं कराता वो गृहस्थ भस्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जल्दी ये लोटा पानी लो, जाकर के उनके पैर धो, हमारे पुराने जमाने में ये प्राचीन ये व्यवस्था थी कि घर में जो मेहमान आते थे तो उनके पानी लेकर के पहले उनके पैर धोते थे, जल्दी जाओ और उनको सत्कार करो। यमराज घबराया, घर में तीन दिन से ब्राह्मण बालक बैठा हुआ है भूखा प्यासा, परेशान होकर के दौड़ा। बीबी ने कहा सुनो, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम इष्टापूर्ति पुत्र पशुं च सर्वान् एतत् वृंते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिस घर में अतिथि ज्ञानी विद्वान, ज्ञानी विद्वान अतिथि भूखा रहता हो, उस घर की जो भी, घर वालों की जो भी आशाएं हैं, जो भी उनका एक्सपेक्टेशन है, जो भी पाने की चाहत है, जो भी उन्होंने अपने रिलेशन बना करके दोस्तों से या अपने लोगों से कुछ फायदा हासिल किया है, जो भी अपने पुण्य के कारण से, अच्छे काम के कारण जो भी उन्होंने पुण्य कमाया है, दान दे करके जो पुण्य कमाया है, यज्ञ करके जो पुण्य कमाया है, जो उनके घर में बच्चे हैं, जो उनके घरेलू पालतू पशु हैं, ये सब बर्बाद हो जाते हैं जिस घर में भूखा प्यासा अतिथि रहता हो, खास करके ज्ञानी विद्वान सन्यासी अतिथि रहता हो। पत्नी ने यमराज को समझाया, ये हमारी अतिथि यज्ञ की परंपरा आज भी चलती आ रही है। वो अलग बात है कि परिस्थितियों के कारण अब बड़े शहरों में वो दरवाजे में छेद होता है, और जो थोड़े ज्यादा अच्छा व्यवस्था करते हैं वो गेट पर ही लगा होता है माइक्रोफोन, कौन है पहले कंफर्म करते हैं, जाना पहचाना होना चाहिए फिर हम खोलते हैं। ये सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, जमाने के साथ इंटरप्रिटेशन बदलना जरूरी है। अतिथि यज्ञ की व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी जानना जरूरी है। इस प्रसंग में थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यम की पत्नी कितनी भावुकता से और कितनी चोट दे करके यमराज को समझाती है, डांटती है कि अतिथि भूखा बैठा है, सब बर्बाद हो जाएगा। अतिथि का अर्थ होता है जिसकी कोई तिथि नहीं, तिथि का मतलब डेट, तारीख, समय। आपके रिश्तेदार जब आपके घर आते हैं वो अतिथि नहीं होते हैं। जनरली हम कहते हैं मेरे घर में गेस्ट आया, गेस्ट मतलब रिलेटिव्स। अब तो रिलेटिव भी रिलेटिव नहीं रहे, वो भी गेस्ट बन गए। उसके लिए भी टाइम लेकर के आना होता है, ये अतिथि नहीं होते हैं। यहां आने के बाद तो और भी बदल जाते। मैंने सुना एक व्यक्ति बड़ा परेशान था कि उसका उसकी जो बहन है वो कहीं दूसरे जगह रहती है। उसने 20-25 दिन पहले फोन करके बताया कि मैं इतने तारीख को तुम्हारे घर आ रही हूं। आदमी तब भी परेशान होकर बोला, देखो अब क्या करूं, अब घर में गेस्ट आने वाले हैं, पहले नहीं बताना चाहिए। पहले नहीं बता, 20 दिन पहले सिर्फ बताता है। तैयारी करनी होती है, हमें और भी व्यवस्था करनी होती है। 6 महीने पहले बुकिंग करना, होटल वाले भी 8 दिन में बुकिंग कर देते हैं। खैर ये बहाना है कि मैं व्यस्त हूं। दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो व्यस्त हो। जो दुनिया को चलाते हैं ये ओबामा के घर में भी अतिथि आते होंगे, पर वो हमसे ज्यादा व्यस्त होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ होते हैं, मालिक होते हैं, जिनके अंडर दुनिया भर में सैकड़ों कंपनियां चलती हैं, वो भी व्यस्त रहते हैं, पर वो भी उनके लिए पास भी समय है। सत्संग में जाओ समय नहीं है, आसन करो समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है, कहां चला जाता है। 3 घंटे बैठ के टीवी देखने में पूरा समय है। क्लब में, रेस्टोरेंट में 3 घंटे बिताने को समय होता है। समय नहीं है ये एक बहाना होता है हमेशा हमेशा। सिर्फ प्रायोरिटी की, प्राथमिकता में अंतर होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इधर का तो पता नहीं, भारत में हमने देखा बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं, और जो जो सारे नहीं, जो जैसे जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रहे, वाजपेयी रहे, जिनके बारे में हमें पता है, वो किताबें लिखते हैं, उनको किताबें पढ़ने और लिखने का शौक है। वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो भी वो बताते हैं मुझे, अच्छा अभी पिछले महीने मैंने ये बुक खत्म किया, आजकल मैंने ये बुक शुरू कर रखा है। एक एक महीने, दो दो महीने में एक एक किताब खत्म कर देते हैं प्रधानमंत्री होते हुए। और हम सिर्फ घर का प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद भी एक पन्ना पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो अतिथि वो है जो बिना तिथि घर में आ जाए, रिलेटिव्स नहीं, जिनको हम नहीं जानते। आप कहेंगे ऐसे लोगों के लिए क्यों व्यवस्था की गई, कोई अनजान आदमी मेरे घर में आएगा मैं उसको देवता की तरह ट्रीट करूं, इसका क्या मतलब है इस संस्कृति का। इसको समझने के लिए प्राचीन भारत की जो व्यवस्था उसको थोड़ी समझनी जरूरी है। प्राचीन काल में हमारे बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे पढ़ने के लिए, घर में नहीं होते थे। हमारे जो पिताजी मतलब जो पिता माता होते थे वो वानप्रस्थ में होते थे, वो घर का काम नहीं समझते थे, वो घर में अगर रहते थे तो सामाजिक कार्य करते थे, या तो घर में नहीं रहते थे तो आश्रमों में गुरुकुलों में व ऐसी जगह जाते थे जहां समाज की सेवा करते थे, सामाजिक कार्य करते थे। जो दादाजी होते थे मतलब जिनको संन्यास, वो संन्यास आश्रम में साधनाओं में तपस्याओं में लगे रहते थे। घर के तीन पीढ़ी बाहर होता था। ब्रह्मचारी अपने घर में खाना नहीं खा सकता, वो गुरुकुल में रहता है, गुरुकुल में खाना नहीं बना करता था, गुरुकुल में भिक्षा से जिंदा जीवित रहना के लिए नियम था। भिक्षा से क्यों कभी आगे चर्चा करेंगे, इसलिए नहीं कि भिखारी बनाना, ये एक शिक्षा की एक व्यवस्था थी। ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने जाएगा, सन्यासी भी भिक्षा मांगने जाएगा, वानप्रस्थ भी भिक्षा से गुजारा करेगा, और वो किसी भी घर में पहुंचते थे और उनके लिए नियम है कि तीन दिन से ज्यादा किसी गांव में भिक्षा नहीं मांगना, किसी व्यक्ति के घर में तीन बार से नहीं अधिक नहीं जाना, मतलब जान पहचान होना नहीं चाहिए, हमेशा अनजान घर से ही भिक्षा लेना। उसका मूल कारण यही था कि जब अनजान व्यक्ति से आप मांगोगे तो आपका अहंकार टूटता है, घमंड टूटता है, और जितना अपने अहंकार पर चोट लगेगा, जितना चोट लगेगा व्यक्ति उतना अंदर की ओर जाने लगेगा, जितनी प्रशंसाएं जितने दुनिया दुनिया की तारीफें मिलेगी उतना व्यक्ति बाहरी दुनिया में जाएगा, उतना अहंकारी बनेगा। इसीलिए व्यवस्था थी सन्यासी के लिए भी और ब्रह्मचारी के लिए भी। ये अतिथि होते थे। अतिथि की परिभाषा अगर आज के कंटेम्प्रेरी परिभाषा बनाए, जो लोग सामाजिक कार्यों में लगे हैं, जीवन की उन्नति के लिए लगे हैं, दूसरों की उन्नति के लिए, वो सब अतिथि हैं। वो कभी भी आए उनका सत्कार करना गृहस्थों का कर्तव्य होता था। अतिथि को देवता की तरह समझना होता था, क्योंकि वो समाज के कार्य में लगे होते थे, वो अपने लिए नहीं करते थे। ब्रह्मचारी अपने आप को योग्य बनाता था, वो भी समाज के लिए, वानप्रस्थी समाज की कार्य करता था, और सन्यासी आत्मज्ञान के चर्चा में होता था। तीनों अपने स्वार्थ के लिए नहीं थे, उनकी सेवा करना गृहस्थ का कर्तव्य होता था, इसीलिए उनको देवता समझना, घर पर आए तो उनकी सेवा करना। अब ना ब्रह्मचारी रहे, ना वानप्रस्थ रहे, ना सन्यासी रहे, तो फिर अतिथि कौन, हम किसकी सेवा करें? तो अर्थ बदल गया। अब अतिथि सेवा का अर्थ है कि जहां भी आपको कोई सामाजिक कार्य करता हुआ दिखे, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई अनाथालय, कोई गुरुकुल, जहां भी समाज कार्य के लिए कोई व्यक्ति संस्था लगा है, वहां आपको जाकर के मदद करना, दान देना, यह अतिथि यज्ञ की आधुनिक परिभाषा है। क्योंकि आपके घर में तो आप कोई आ नहीं सकता, मतलब हमारे घर में तो आप कोई आ नहीं सकता, दुनिया बदल चुकी है। अब ब्रह्मचारी रहे भी नहीं, अब तो बच्चा स्कूल जाता है, घर में रहता है। वानप्रस्थी सन्यासी की परंपरा खत्म हो गई। आजकल सन्यासी का मत में बात नहीं कर रहा हूं, उनका तो गृहस्थियों से बड़ा आश्रम होता है, बड़ा महल होता है, बड़ी गाड़ियां होती है, बड़े बड़ी कमाइयां होती है, वो गृहस्थ से ज्यादा बड़े गृहस्थ होते हैं, उनकी बात में नहीं कर रहा। जो सन्यासी भिक्षा से गुजारा करता है, तीन दिन से ज्यादा किसी गांव में भिक्षा मांगता नहीं है, जिसके घर में सुबह क्या खाना शाम को नहीं होता है, शाम को क्या खाना सुबह नहीं होता है, वो सन्यासी है। हमारे प्राचीन व्यवस्था के अनुसार सिर्फ वही सन्यासी है। इसीलिए अतिथियों का सम्मान था, अतिथियों का सम्मान था। ये अतिथि एक खास उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमारे यहां अतिथि यज्ञ की व्यवस्था की गई, इसीलिए उनका इतना सम्मान था, अतिथि का अपमान नहीं होना चाहिए। अब विषय पर आते हैं, समाप्ति की ओर। तो यम की पत्नी ने बोला, तीन दिन से ये भूखा प्यासा ब्राह्मण अतिथि बैठा हुआ है, जल्दी जाओ पानी लेकर उनकी सेवा करो, नहीं तो घर की सारी अनिष्ट होगा। यमराज दौड़े, ध्यान रखिएगा, जब भी नचिकेता मौत के पास गया था तो जो गया तो मौत घर पर नहीं था, और हम हमारे पास मौत आता है फर्क क्या है? जब भी आदमी मौत को स्वीकार करने को तैयार होता है, मौत भाग जाती है। जब भी हम मौत से डर के व्यवस्था करते हैं, मौत इतना जल्दी और हमेशा मिलती है। जीवन में जो मौत से डर है वो हमें हर पल मारता है। हम हर पल मरने की दुःस्वप्न में जीते हैं, क्योंकि हम मरने से डरते हैं, मरने से दूर रहना चाहते हैं। और जो लोग मरने से डरना छोड़ दिया, ठीक है मौत को आने दो, मौत उनके पास मुश्किल से आती है। आज दुनिया में जितने भी महान काम हुए हैं, वो महाकाश यात्रा किया हो, समुद्र के गहराई में घुसे हो, विज्ञान की अलग अलग आविष्कार किया हो, या योग साधना की अध्यात्म ज्ञान की चरम शिखा पर गए हो, वो वही लोग होते हैं जो मौत से नहीं डरते हैं। ऐसा नहीं कि वो मर जाते हैं, उनमें कुछ लोग मर भी जाते हैं, महाकाश में जाने पर भी कुछ लोग मर गए, पर ऐसा तो घर में रहकर भी हम कभी भी मर सकते हैं। पर समस्या जिसको मौत से डर है वो हर पल मरता है, और जो मौत को स्वीकार करता है मौत भाग जाती है। यही उसका प्रतीक है कि नचिकेता मौत के दरवाजे पर पहुंचता है और मौत नहीं होता है। यमराज सत्कार करने आते हैं, पैरों में गिरते हैं कि ब्राह्मण बालक मुझे माफ करो, 3 दिन से तुम भूखा प्यासा हो, तुम्हें संतुष्ट करने के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो तो तुम 3 रात भूखे प्यासे रहे, उस 3 रात की जो तुम्हारी पीड़ा है उस पीड़ा को कम करने के लिए, तुम्हें संतुष्ट खुश करने के लिए मैं तुम्हें 3 वर दे सकता हूं। वो 3 वरों से तुम जो कुछ मांगना है मांग लो, जिससे कि जो 3 रात भूखे प्यासे रहे, तुम्हें जो दुख हुआ उसका निवारण मैं कर सकूं। 3 वर क्या है आगे हम चर्चा करेंगे। इन्हीं 3 वरों से अध्यात्म ज्ञान की रास्ता खुलता है। ओम शांति।